着呢。Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai. Jaya Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. निताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की श्री गौरांग महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबका श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री गौरांग महाप्रभु के सुंदर मंदिर में स्वागत है। सवेरे के प्रवचन में भी कुछ लोग थे जो अभी यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपके लिए रिवीजन होगी, लेकिन अधिक विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी हमारे पास समय कितना है तो बता पाएगा? 8:30। तो आज का हमारा विषय है कि होली का जो उत्सव है उसका क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस को क्या कहते हैं, महत्व, महिमा, गरिमा क्या है, और उसके उसके माध्यम से हमारे लिए क्या संदेश है, टेक होम मैसेज क्या है।
हरे कृष्णा।
सो दुर्भाग्य से हमारे बचपन से हमने होली का विकृत स्वरूप ही देखा है, और जो हम बचपन से देखते आते हुए हमको नॉर्मल लगता है ना, जैसे औरतों पर रंग डालना, उनको छेड़ना, उन पर जबरदस्ती से रंग लगाना, परेशान करना, गाड़ी पर कलर फेंकना, मतलब जितना हो सके उतने लोगों को कष्ट देना, इसी को होली समझते हैं। फिर गंदे केमिकल्स ऑयल पेंट लगाकर किसी का मुंह खराब करना, बाल खराब करना, और ऐसे बहुत प्रकार की विकृत प्रकार की मनोवृत्तियां हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब कोई विकृत चीज आपको दिखाई पड़ती है उसके पीछे एक सत्य भी छुपा होता है, आदर्श भी छुपा होता है, वास्तविकता छुपी होती है। तो इसलिए हम कोई विश्व भर में अभी ये बात तो नहीं कह रहे हैं, कुछ लिमिटेड लोगों के सामने कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को भी ये ठीक से समझ में आएगा तो हो सकता है आप और किसी लोगों को बताएंगे और ये सत्य उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि ये जो असत्य और विकृत बात लोगों को नॉर्मल लगती है वो मन से निकल जाए। तो जो सवेरे में कहानी बताना भूल गया था वो मैं पहले बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा में होती है, इसको हम धूलि वंदन कहते हैं। उसके पहले दिन चतुर्दशी की रात को होलिका दहन भी होता है, लेकिन ब्रज में वसंत पंचमी को होली शुरू होती है, माघ शुद्ध पंचमी, जो हमारे भारतवर्ष के पंचांग के 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। उस दिन कोई मुहूर्त देखना नहीं पड़ता है, आप कभी भी गृह प्रवेश या विवाह संस्कार या और भी कोई संस्कार जो करना है बिना मुहूर्त के, आप पूरा दिन मुहूर्त ही मुहूर्त है। दशहरे का और एक दिन है जिसमें भी पूरा मुहूर्त है। तो बसंत पंचमी के दिन दोपहर को जब भगवान को शयन से जगाते हैं तो पहली बार रंग उनको चढ़ाते हैं, और रंग चढ़ाने के पश्चात सबके ऊपर रंग उधलना शुरू होता है और ब्रज की होली शुरू होती है। तो कुल मिलकर माघ शुद्ध पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के बाद और 5 दिन, ऐसे कुल 45 दिन ब्रज में होली खेलते हैं। तो ये होली का सीजन है। हाँ, इसको फाग महोत्सव कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा जो फाल्गुन का महीना है वो इसी में चला जाता है। कम से कम फाल्गुन के 20 दिन तो इसमें चले जाते हैं और बाकी के 25 दिन अगले महीने में, माघ महीने में होते हैं। तो ये हमारे संस्कृति की भव्यता है। हाँ, हम लोग उसको कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी हम लोग केवल टिप ही देख पाते हैं, उसके अंदर कितना छुपा हुआ है, गहराई, सार, सूक्ष्मता, महिमा, गरिमा, गौरव, ये हमको नहीं पता चलता है। लेकिन संतों के संगति में ये सब कुछ पता चलता है। सारे जीवन का जितना भी रहस्य है वो संतों की संगति में ही प्रकट होता है, और कोई दुनिया में माध्यम नहीं है। और वो संत जो है शास्त्रों से और अपनी तरह जो अपनी तरफ से जो सत्संग करते हैं उनमें से उनको ये अनुभूतियां प्राप्त होती है। और संतों को ही भगवान ने पूरा ये होलसेल कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा है, साक्षात्कार प्रकट करने का आपके हृदय में, हमारे हृदय में इसका पूरा जो जिम्मेदारी है भगवान ने संतों को देकर रखा है। और संत ही बड़े दयालु होते हैं, वो भगवान के लीलाओं का सारा रहस्य जो है वो हमारे लिए सरल भाषा में प्रकट करते हैं। तो ये रोज ब्रज में, पूरे ब्रज में 84 कोस में, और जो उपवन उपब्रज है जो उसके आगे भी आगरा पलवल दूर दूर तक ब्रज फैला हुआ है, वहां सारे ब्रज ब्रज में ये 45 डेज की होली मनाई जाती है। उसमें एक सबसे प्रमुख होली है जिसको कहते हैं रंगीली होली, वो फाल्गुन महीने के शुद्ध पक्ष के नवमी को होती है, और उत्सव जो है वो एक दिन पहले शुरू होता है और 15 दिन से उसकी तैयारी शुरू होती है। वो तैयारी क्या है बताऊंगा आपको मैं। तो अष्टमी के दिन क्या होता है, अष्टमी के दिन नंदगांव से कृष्ण की ओर से निमंत्रण लेकर एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम पांडे है, उसको कहते हैं पांडे लीला। तो पांडे जी आते हैं नंदगांव से निमंत्रण लेकर, राधा रानी गोपियां और बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं उनको निमंत्रण देने के लिए आते हैं, और वो पीली पोखर में आते हैं और सब लोग उनको गोपियां घेर लेती हैं, राधा रानी उस समय नहीं होती है, और उनको घेर कर पूरे रंग से पूरे पूरा चारों तरफ से भिगा देते हैं। बेचारा अकेला आदमी ब्राह्मण सौम्य स्वभाव का नम्र स्वभाव का वो कुछ कर नहीं पाता है, बिल्कुल दुखी हो जाता है, दुखी मतलब ही गेट्स ओवरवेल्म्ड, हावी हो जाते सब उसके ऊपर। कुछ देर बाद राधा रानी आती है और फिर उन्हें छुड़ा देती है, उनके जंगल में से छुड़ा देती है, क्षमा मांगती है कि आप हमारी जो सहेलियां हैं बहुत उद्दंड है, उन्होंने आप पर आतंक किया, आपको परेशान किया, त्रस्त किया, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप हमारे घर पे आइए, राजमहल में आइए, उन सुगंधित जल से स्नान कीजिए, नए वस्त्र पहनिए, हमारा सत्कार सेवा स्वीकार कीजिए। तो उन्हें वो अपने महल में ले जाती है बरसाने के भानुगढ़ के भानु महल में, और ब्राह्मण देवता स्नान करते हैं, उनको नए वस्त्र देते हैं, वो पहनकर आते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं उनको, उनके चरण पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको फेटा चढ़ाते हैं, उनको दुपट्टा देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। और ये जब होते होते मैया को पता चलता है, राधा रानी की मैया को, कीर्ति मैया को, कि ब्राह्मण देवता आए हैं नंदगांव से निमंत्रण देने के लिए, तो भाग भाग के आती है बड़ी खुश होकर, और अपने हाथ में लड्डू लेकर आती है और ब्राह्मण के मुख में भर देती है, 1 2 3 4, तो इसका नाम है लड्डू मार होली। तो इसको आज भी मनाया जाता है अष्टमी के दिन, नंदगांव से ब्राह्मण आते हैं सज धज के आते हैं, हुरियारे बनकर आते हैं, हुरियारे यानी होली, होलियारे यानी होली खेलने वाले, अलग अलग रंग बिरंगी भेष पहनकर, पिचकारियां रंग सूखे गीले पिचकारियां लेकर आते हैं अपने शरीर पर धारण करके, वो आप उसको क्राउड में भी पिकअप कर सकते हैं, एकदम अलग दिखते हैं। वो पहले पीली पुखर में आते हैं, फिर वहां से श्री जी मंदिर में जाते हैं, और श्री जी मंदिर में आप जैसे लोग सब लोग लड्डू अर्पण करते हैं उस दिन श्री जी मंदिर में, बहुत सारे मतलब हजारों लड्डू वहां पर आते हैं, भोग लगाते हैं, और राधा रानी की माँ की तरफ से पुजारी लोग मंदिर से बाहर उन होरियारों के ऊपर लड्डू फेंकते हैं और वो कैच करके उसको खाते हैं। आज की लड्डू मार होली का स्वरूप है, बड़े प्रेम से कीर्ति मत मैया के ओर से उनके भाव से ये लड्डू फेंके जाते हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य होता है, और वो लड्डू जितने अधिक प्राप्त करते हैं वो बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, क्योंकि कीर्ति मैया की कृपा है ये। तो ये 45 दिन की होली एक ऐसी जगह है ब्रज में, मैं उसके आगे बढ़ूंगा, यहां पर विश्राम देता हूं। एक जगह ब्रज में ऐसे जहां पर 12 महीने होली खेलते हैं, एक ऐसा विशिष्ट स्थान है, व्हेनेवर यू गो दे प्ले होली कॉन्स्टेंट 12 मंथ्स इन अ ईयर। उस स्थान की महिमा ऐसी है कि उसका गांव, उस गांव का नाम है गांठोली, गांठ होते ना गांठ, गांठोली उस गांव का नाम है, और उसके अंदर गुलाल कुंड है, दोनों नाम से हम जानते हैं उनको, गुलाल कुंड के नाम से जानते हैं और गांठोली नाम से भी जानते हैं। तो इस गांव में एक बार राधा और कृष्ण पास पास बैठे थे और बहुत प्रेम में मग्न थे वो भाव से, तो आसपास का जो क्या होता है ना अवेयरनेस वो सब भूल चुके थे वो। तो सखियां आती देखती हैं कि राधा और कृष्ण श्याम सुंदर जी बड़े मग्न हैं एक दूसरे के प्रेम में, तो ललिता जी पीछे से जाती है और चुपके से उनके दोनों वस्त्रों को गांठ लगा देती बहुत बड़ी, और वो मग्न ही है और फिर सब लोग छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद में वो दोनों बाह्य चेतना में आते हैं, यू नो दे कम टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, और जब उठते हैं तो देखते हैं कि वो गांठ लगी हुई है, यू नो यू वांट टू गेट अप एंड गो, ऐसा जाना है आपको, लेकिन पता चलता है कि हम लोग बंधे हुए हैं। तो जब बंधे हुए देखते हैं तो वो शर्मा जाते हैं और सब सखियां जो छुपी हुई है वो हंस पड़ती हैं, और जब हंस पड़ती है तो उनको पता चलता है कि वो हमको देख के हंस रही है तो और शर्मा जाते हैं। उतने में सब सखियां जो है पिचकारियां निकालती हैं और दोनों को भिगा देती हैं ऑफ द होली सीजन, होली का सीजन नहीं, और इतना गुलाल का जल, एक होता है गुलाल सूखा और गुलाल को ही हम लोग भिगा के जल बनाते हैं उसका रंगी बिरंगी जल, गुलाबी जल, तो गुलाबी जल की पिचकारियां इतनी चढ़ाते हैं, इतनी चढ़ाते हैं कि वहां पर एक विशाल कुंड निर्माण होता है, वो उसका नाम है विशाल, विशाल कुंड का नाम है गुलाल कुंड। वो गुलाल कुंड का जो जल है वो राधा कृष्ण का रंग 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 रंगीली होली का चरणामृत जल है, और आज भी वहां पर यह स्थान विराजमान है जहां पर एक अद्भुत दृश्य है। वहां पर एक तो 12 महीने की होली चलती है वहां पर, और एक अद्भुत दृश्य ऐसा है कि वहां पर एक तमाल का पेड़ है, तमाल का पेड़ आप सब जानते हैं ना, वो कृष्ण का स्वरूप है। गोपियां कृष्ण मथुरा जाने के बाद में कृष्ण के विरह में इस सांवले रंग के पेड़ को गले लगाते थे विरह में कृष्ण की याद में, और जो कदम का पेड़ है उसका जो बुंदा होता है ना, वो जो क्या कहते हैं खोड़ या ट्रंक कहते हैं उसको, वो गोरे रंग का होता है और तमाल के पेड़ का काले रंग का होता है। तो कदम के पेड़ को राधा रानी माना गया है, तो वो दो पेड़ जो है वो एक जगह मिले हुए हैं, वहां पर एक गांठ है ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा पेड़ है, बीच में एक बिल्कुल ऑब्वियस गांठ है, और मैं भी 35 साल से देख रहा हूं वैसे के वैसे ही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा पता नहीं, तो कलयुग के प्रभाव से आगे क्या क्या नष्ट हो जाएगा पता नहीं है, इससे जितना जल्दी हो सके आप जाइए और दर्शन करके आइए। आज भी वो दर्शन है जहां पर वो बैठे थे उसके प्रतीक के रूप में वो दोनों पेड़ अभी गांठ बांधे हुए स्थिति में है। और अभी चैतन्य महाप्रभु का हमने कल आविर्भाव उत्सव संपन्न किया ना कल से, तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा है। वो कथा यह है कि चैतन्य महाप्रभु जब से जगन्नाथपुरी गए संन्यास लेकर, तब से वृंदावन के लिए वो तड़प रहे थे तब से, लेकिन हर बार भक्तों ने उनको रोका। एक बार तो जब निकले थे तभी बहुत बड़ी जनसंख्या उनके पीछे जा रही है कीर्तन करते हुए, तो मेरे ख्याल से सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि महाप्रभु जी आपको इतना बड़ा समुदाय लेकर ऐसे विद ग्रेट पॉम्प आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, आपको वृंदावन में एकांत में जाना चाहिए। तो वहां से यू टर्न करके चले जाते हैं, सब लोग भी चले जाते हैं, कैंसिल हो गया प्लान। फिर गुप्त रूप में बलभद्र भट्टाचार्य एक और असिस्टेंट और करके, वो भी महारास्ते से नहीं मतलब महामार्ग से नहीं और रास्ते से जंगल के रास्ते से झारखंड के रास्ते से निकलते हैं, और वहां कीर्तन करते करते जब मथुरा आते हैं और मथुरा से फिर भ्रमण शुरू करते हैं, फिर काम्य वन जाते हैं, वहां पर विमल कुंड में स्नान करते हैं, विमल कुंड से स्नान करते हुए नंदगांव आते हैं, पावन सरोवर में स्नान करते हैं, पावन सरोवर में आके नंदगांव में राधा यशोदा मैया नंद बाबा और कृष्ण भगवान के विग्रह को प्रकट करते हैं। हाँ, फिर वहां से गोवर्धन आते हैं और गोवर्धन में कृष्ण का दर्शन होता है उनको, बेहोश हो जाते हैं, फिर राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट करते हैं, है ना, ऐसे करते करते फिर वो वृंदावन आते हैं। बड़ी लंबी कहानी है लॉर्ड चैतन्य इन वृंदावन, पूरा सुंदर वर्णन है उनका, कितना सुंदर लीला किया उन्होंने। फिर राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट करते हैं, फिर वृंदावन आते हैं और इमली तला में रहते हैं, इमली तला में रहते हैं और इमली तला में जप करते हैं, और इमली तला में गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु सांवले रंग के हो जाते हैं, राधा रानी का भाव लेके आते ना तो गौर वर्ण में आते हैं, लेकिन जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो सांवले रंग के हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। उसी जगह पर कृष्ण भगवान ने बैठकर जप किया था राधा रानी के नाम का, तो सांवले रंग के कृष्ण गौर वर्ण के हो गए थे उसी स्थान पर इमली तला। तो जब कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है प्रैक्टिकली, कृष्ण ने भी सिखाया है। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो प्रेमाश्रुपूर्णो हरि, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के दो चरणों पर ध्यान करते हुए, हृदय के आंगन में ध्यान करते हुए, मुख से राधे राधे पुकारते हुए, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तब उनका रंग जो है वो गौरव वर्ण हो जाता है। और उसी जगह पर जमुना जी को निहारते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जब करते हैं तो वो श्याम वर्ण के हो जाते हैं। तो एक बड़ा सुंदर आदर्श उन्होंने स्थापन किया है। 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रहे और हर रोज उन्होंने, जैसे हमारे भाषा में हरिनाम सेमिनार लिया, सारे ब्रजवासियों के लिए भगवान के नाम का जप कैसे करना चाहिए इसके विषय में हर रोज कई घंटों तक प्रवचन दिया। उसी बीच में एक बार एक अफवाह उठी थी कि कालिया घाट के पास कृष्ण का अवतार हुआ है, कृष्ण दोबारा अवतार दे दर्शन दे रहे हैं, कालिया पर नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु के प्रवचन से लोग उठकर जाने लगे, अभी जाना है दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु जी कह रहे, नहीं नहीं, ये कोई समय में शास्त्र में लिखा नहीं है कि अभी कोई अवतार का समय नहीं है। फिर भी लोग भाग रहे हैं। तो फिर उनको पता चला कि रात के समय पे जमुना जी में एक मछुआरा बोट में बैठकर लालटेन लेकर मच्छी पकड़ रहा है। तो वो जो मछुआरा है वो कृष्ण है, वो बोट जो है वो कालिया नाग है, और जो लालटेन है वो कालिया नाग के सर के ऊपर मणि है, ये अफवाह थी। फिर पता चला कि ये मछुआरा है। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसे अफवाहों को सुनकर हमको विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमारा ट्रायंगल है ना, त्रिकोण, गुरु साधु और शास्त्र, इसमें प्रमाण मिलता है तो ही हम उसको मानते हैं, कोई भी मनगढ़ंत बातों को हम मानते नहीं है। ये भी बात उन्होंने वहां पर सिखाई। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चला जब गोवर्धन से गुजरे थे कि गोपाल जी का विग्रह माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन के ऊपर आनियोर गांव में व्यतिपुरा में लगाया है, वहां पर विराजमान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे ना, भक्त अवतार, तो भक्त जो है वैष्णव गोवर्धन पे चढ़ते नहीं है क्योंकि विष्णु का स्वरूप है वो। तो भी वो ठाकुर जी तो गोपाल जी विष्णु के पर्वत के ऊपर है और मुझे दर्शन करना है तो कैसे करें। तो गोपाल जी अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देना है। तो गोपाल जी ऐसी लीला करते हैं कि ऐसे अफवाह फैला देते हैं कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं। उस समाना ऐसा था महाप्रभु के आगे और पीछे भी कि बहुत हमारे भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ, हर समय हिंदुओं के मंदिरों के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया, मंदिर ध्वस्त किए गए, तो काफी वहां पर हलचल और आतंक और भय चलता रहता था। आ रहे ऐसे होता था। तैसे ही अफवाह उड़ी और सबको लगा आ रहे तो भी क्या करे, गोपाल जी के मंदिर में आकर गोपाल जी को ध्वस्त कर देंगे। तो गोपाल जी के पुजारी जो ब्रजवासी थे उन्होंने गोपाल जी का विग्रह लिया और वो भाग गए, और भाग के कहां गए, गांठोली गांव गए। और गांठोली गांव में एक झोपड़ी में उन्होंने गोपाल जी का विग्रह रखा। और चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि गोपाल जी पहाड़ छोड़कर गांठोली गांव में गए। तो भाग कर भावावेग में, भाव विवेश विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु गांठोली गांव गए और 7 दिन चैतन्य महाप्रभु गांठोली गांव में रहे, उस जगह पर जहां पर वो पेड़ है, दोनों पेड़। और वहां पर उन्होंने 7 दिन 7 रात कीर्तन किया बड़े धुआंधार प्रेम से, और गोपाल जी का दर्शन किया बड़े खूब प्रेम से। उसके बाद में पता चला कि ये अफवाह थी, तो फिर गोपाल जी को वापस लाने का प्लानिंग किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस जुलूस का नेतृत्व किया हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दोनों लीला एक ही गांव में हुई है। 12 महीने वहां पर होली चलती है और इसी गांव में 7 दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी का दर्शन करते हुए सभी गांव वासियों को हरिनाम संकीर्तन का दिव्य आनंद दिलाया था। तो हम दोबारा चलते हैं, अभी अष्टमी का दिन उत्सव समाप्त हो गया है, लड्डू मारोली हो गई है, लड्डू खाके हो गया है। अगले दिन सवेरे हुरियारे जो होली खेलने आते हैं नंदगांव से सज धज कर, बड़ा सुंदर पाग पहनते हैं रंग बिरंगी, ढाल लेके जाते हैं जो बलराम जी का स्वरूप है, बताता हूँ उसको उसका उपयोग क्या है। फिर जैसे वो होता है ना सैनिक हमारा, वो कैसे होता है, वो शरीर पे पूरा, यहाँ पर बम, यहाँ पर गोलियां, यहाँ पर छोटा बड़ा हर प्रकार के, फिर संगीन उसके आगे ऐसे पूरा लद कर चलते हैं लेस होकर। तो वैसे ये पूरे लद कर चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अबीर, गुलाल और केसर जैसे अलग अलग रंग, ड्राई, फिर पिचकारियां भरी हुई, हाँ, और वो जुलूस में चलते हैं सब ग्वाल बाल सज धज के, और इतने खुश है आज होली खेलने वाले। ये होली का जो उगम है वो बरसाने में हुआ है, पूरे विश्व के होली का केंद्र स्थान बरसाना है, और प्रेम व्यक्त करने के लिए ये होली का खेल खेलते हैं। आज के विकृत विभत्स स्वरूप से हम उसको विचलित नहीं होना चाहिए, केवल हमारे प्रेमी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए, उनका प्रेम स्वीकार करने के लिए रंगों के माध्यम से हम लोग होली खेलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है तो कि अनजान लोगों के साथ में होली नहीं खेलते कभी, जिनका हमारा कोई संबंध नहीं है, वी डोंट नो देम, तो प्रेम का आदान प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि होली प्रेमी जनों के पहचान के लोगों से ही खेली जाती है, अनजान लोगों पर रंग खेलना यह होली का उत्सव का अर्थ नहीं है, नंबर वन। तो और साथ साथ में कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल बड़े बड़े बक्से भर भर के लेके जाते हैं, जिसमें सोने के गहने हैं, रत्नों के गहने हैं, वस्त्र है, खाने के पदार्थ हैं, बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं हैं, इससे भर भर के लेके जाते हैं साथ में बैलगाड़ियों में, और बड़ा सुंदर जुलूस निकलता है। उस जुलूस के अंदर पंचमुखी शिव जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सुखदेव जी और पूर्णमासी देवी और बहुत सारे इंद्र, इंद्र भगवान, सभी देवताएं भेष बदल कर ब्राह्मण बनकर उसमें आते हैं, क्योंकि वो इतने आतुर होते हैं, इतने आतुर होते हैं, इतनी सुंदर लीला होने वाली, सब देवता लोग भेष बदल कर आ जाते हैं, क्योंकि देवता लोगों को ना रैन बसेरा नहीं है वहां पर। व्हाट इज रैन बसेरा? रात का निवास। ब्रज में देवताओं को रात का निवास नहीं है, दिन में आ जाओ चले जाओ, वो भी ब्रज के बाहर चप्पल निकालना है, अपने व्हीकल सब बाहर लगना है, कोई चूहा है, कोई मोर है, कोई कौवा है, सब इनके वाहन है ना, वो सबको वहां पर ब्रज के बाहर पार्किंग करके जूते उतार के, जैसे कृष्ण भगवान नंगे पैर चलते हैं वैसे नंगे पैर चल के आना है, कोई मीटिंग वीटिंग करना है तो करना है, और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होती है, कृष्ण का महाप्रसाद ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी आए थे एक बार कृष्ण का महाप्रसाद खाने के लिए, देख रहे हैं जमुना जी के पास बैठकर सब भोजन कर रहे हैं, तो हाथ तो जमुना जी में धोएंगे ना, तो हाथ को कुछ लगा होगा तो जमुना जी में गिरेगा, तो मैं वहां से मछली बनकर खाऊंगा उसको। तो भगवान ने बहुत देर तक कमलाकार व्यवस्था में बैठकर भोजन किया, हाथ धोने का समय आया, भगवान जमुना जी के पास गए, हाथ धोने के लिए झुके तो देखा मछली बन के महाराज घूम रहे हैं, धोने में पानी लिया और जमीन पे आके हाथ धोया। तो इसका अर्थ यह है कि महान महान देवताओं को भी ब्रज में महाप्रसाद नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। तो एनीवेज, तो ये बात कहां से निकली थी? तो अभी वो जुलूस में निकल रहे हैं, सब लोग व्याकुल हैं इसलिए भाग ले रहे हैं, लेकिन दिन दिन में आए हैं, दिन दिन में वापस चले जाएंगे। तो अपना भेष बदल के आए हैं, तो वहां पर ब्रह्मा जी जो है वो अपना अपना कुछ जोकिंग मनोरंजन पूर्वक एक्टिविटी कर रहे हैं, पंचमुखी शिव जी भी कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं ताकि उनकी पहचान ना हो जाए, उनको रिझा रहे हैं सब लोगों को, भगवान अपने ग्वाल बालों पर बड़ा प्रेम करते हैं इसलिए उनको रिझाने के लिए सब ये हरकतें कर रहे हैं। इंद्र जी जो है ना वो अपना जो गाल है ना उसको फुगा फुगा कर ऐसा आवाज निकाल रहे हैं, फनी आवाज निकाल रहे हैं, ग्वाल बाल बहुत जोर से हंस रहे हैं, और सुखदेव जी नग्न अवस्था में आए हैं, नारद मुनि उसको गोद में लेकर चल रहे हैं डांसिंग करते हुए, पूर्णमासी डांसिंग करते हुए चल रही है, मतलब इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर प्रेम का महोत्सव है, सब कृष्ण बलराम सब नाचते हुए जा रहे हैं, और बीच में फिर ग्वाल बाल जो है ना वो बहुत नटखट होते हैं, तो बहुत शरारती होते हैं, नंदगांव के जो ग्वाल बाल होते हैं ना वो उनका एक महिमा है कि नंदगांव में अगर कोई साधु जाएगा और नंदगांव के बालकों का आतंक सहन करेगा तो वो कहते हैं कि अभी ये सिद्ध महात्मा हो गया, ये उसका प्रमाण है कि नंदगांव के बालकों का आतंक और उनका छेड़खानी अगर नहीं, जप नहीं करना है आपको कथा में, तो नंदगांव के बालकों की छेड़खानी आतंक सहन करते हुए को भजन कर सकता है तो ही सपोज टू बी द ग्रेट साधु। तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, एक गान बन है वहां पर, गान बन, वो गान बन में ये सभी ग्वाल बाल आते हैं और वहां पर संगीत गोष्ठी होती है, यानी कृष्ण भगवान बलराम जी कृष्ण मुरली लेकर आते हैं, सब ग्वाल बाल बड़े अच्छे संगीतज्ञ है, सब ग्वाल बाल दे आर बेस्ट, बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स, बेस्ट ऑफ ऑल डांसर्स, हाँ। तो आते हैं और वहां पर सारे आते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, गंधर्व और किन्नर, यक्ष और किम पुरुष, जितने भी लोग हैं ना वो गाने बजाने में और नृत्य करने में एक्सपर्ट है सब लोग, अप्सराएं वो सब आ जाते हैं। पक्षी जो है ना वो ऐसे शाखा पर लाइन से स्तब्ध बैठ जाते हैं शांति से, और वो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं अलग अलग लोकों के, सिद्ध महात्माएं, वो ये ग्वाल बालों की संगीत गोष्ठी सुनने के लिए पक्षी के रूप में आकर स्तब्ध बैठते हैं वहां पर शांति से, कोई 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 बात नहीं करता है। और ये लीला जो है वो ब्रह्मा जी के ब्रह्म मोहन लीला के बाद में हुई है, तो ग्वाल बाल भी थोड़े परेशान थे कि इन्होंने हमको छीना था वगैरह वगैरह। तो जब भी वो गुफा में बंद थे ना ब्रह्मा जी के लोक में, तब कुछ ग्वाल बाल बोल रहे थे ब्रह्मा जी को, दिखा दे कि हमारा बल क्या है। बोले नहीं नहीं ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये आएगा ना हमारे पास कभी तब दिखा देंगे उसको। तो उसके बाद पहली बार ब्रह्मा जी आए हैं तो ग्वाल बाल उनको पकड़ के ऐसा ऐसा रैगिंग करते हैं। तो ब्रह्मा जी, कुछ आता भी था है कि आपको बजाना बजाना आता है कुछ? दूसरा बोल रहा है कैसे बजाने आएगा, पोथी से फुर्सत मिलेगी तो बजाएंगे ना कुछ। मतलब ब्रह्मा जी हमेशा शास्त्र पढ़ते ना, उनके हाथ में एक ग्रंथ भी है हमेशा, तो कहते हैं पोथी से फुर्सत मिलेगी तभी सीखेंगे कुछ गाना बजाना। बोले गाना बजाना नहीं आता है तो चुप बैठो, कुछ नहीं बात करना है आपको। एक ग्वाल बाल गया दाढ़ी खींचा उसकी, बोला चुपचाप बैठो यहां पर आवाज नहीं करना है। शिवजी को बोलते हैं कि केवल डमरू बजाना आता है कि गाना बिना भी आता है आपको? नहीं आता है तो चुपचाप बैठो। ऐसा करके सारे देवता वहां पर चुपचाप बैठ जाते हैं और फिर ग्वाल बाल गाना शुरू कर देते हैं। उनका गाना सुन के गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, ब्रह्मा और शिवजी भी स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसा वो गान बन है, उसका नाम है गिड़ो गेंदोवा, तीन नाम है उसके। माँ भगवान ने गेंद भी खेली थी बचपन में। एनीवेज हम लोग भटक रहे हैं, जरा वापस आते हैं। तो एक ग्वाल बाल मैंने क्यों बताया कि वो बहुत किसी को डरते नहीं, वो कृष्ण पर इतने प्रेम और इतनी श्रद्धा है, वो किसी से भी डरते नहीं है। तो पता है ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? अरे याको तो चार चार मुख है, आठ आठ गाल हैं, या के पत्नी को चुम्मा लेना होगा तो कौन से गाल मिलोगो? वे दी विल किस। ऐसे बात कर रहे हैं, शिव जी से भी ऐसी बात करते हैं और वो भी हंसते जोर जोर से, ऐसा मतलब यार ओके। तो ये सिचुएशन है। हाँ, वहां पर ब्रज में ग्वाल बाल गोपियां, इनके आगे और कोई बड़ा नहीं है, एवरीबडी इज इनसिग्निफिकेंट। और वो लोग भी समझते हैं हमारी पोजीशन क्या है, उनको ये पता है नम्रता से कि ऐसी लीला में प्रवेश करने की हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हमको मिल रहा है प्रवेश, तो जो भी है एक्सेप्ट कर लो और देख लो क्या चल रहा है। ऐसे झूमते हुए गाते हुए बैलगाड़ियों में पिटारे भरते हुए सब लोग पीली पोखर में पहुंचते हैं। पीली पोखर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी गोपियों से मुलाकात होती है। तो वो सुबह मैंने विस्तार में नहीं बताया था, तो कृष्ण भगवान दूर से देख रहे हैं। हाँ, किसको देख रहे हैं? राधा रानी को ढूंढ रहे, नजर ढूंढ रही है किधर राधा रानी, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, सज सज के आए हुए हैं होली खेलने के लिए, वो भी झकपक वस्त्र पहन के आए, ये भी चमकदार वस्त्र पहन के आए हैं। और फिर वो विशाखा को नजर से पूछते हैं, एक और गोपी नहीं है, ललिता साथ में उसमें। तो इशारा नजर से ही पूछ लेते किधर है, तो विशाखा कहती है नजर से ही रूठी हुई है, महल में बैठी हुई है। तो कृष्ण नजर से कहते हैं उसको लेके आओ। फिर विशाखा जी भागती है महल में, भानुगढ़ में, पर्वत में, और वहां पर कुछ सखियां ललिता के नेतृत्व में रूठी हुई राधा रानी को मना रहे हैं। और ललिता जी कह रही है, विशाखा भाग भाग के आती है, अरे अभी तो रूठी बैठी, वो तो आ गए हुरियारे, सब लोग आ गए, कृष्ण बलराम सज सज के आ गए, नायक आ गए होली के, ये रूठने का समय नहीं है, चलो। तभी वो नहीं मान रही है। अगर नहीं मान रही हो जाके झरोखे से देखो, तो झरोखे में आती है वो और देखती है पीली पोखर। आज भी पीली पोखर में खड़े रहेंगे ना तो एक एंगल में आपको वो झरोखा दिखाई पड़ता है राधा रानी के मंदिर का, तो वहां दर्शन देती है। तो यहां से कृष्ण पिचकारी निकाल के मार देते हैं, लेकिन वो पिचकारी जो है वहां तक नहीं पहुंचती है, लेकिन दिल का भाव जो है वहां तक पहुंच जाता है। पर उससे राधा रानी बड़ी प्रेरित होती है, रूठना छोड़ देती है, तुरंत एक्सप्रेस मेकअप करती है और ललिता देवी विशाखा देवी उनको लेकर आती है। और कृष्ण भगवान देखते हैं कि राधा रानी आ रही है, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उनका मिलन होता है, फिर वो तय करते हैं कि कौन से प्रकार की होली खेलनी है, किस किस नियम से खेलनी है। तो पहले उनका तय होता है कि सूखी होली खेलनी है, उसके बाद योग्य समय पर गीली होली खेलेंगे, मतलब पिचकारी से। तो सुखी होली खेलने का शुरू हो जाता है। सारे सखियां और सखाओं पर रंग डालते हैं और ऐसा उनको क्या कहते हैं ना, हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, दे कंप्लीटली ओवरवेलम देम। और कृष्ण की पार्टी जो है वो सुखी होली में हारना आरंभ हो जाता है। अब सब देख रहे हैं ना, अभी आप समझो आप मेरी सेना आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, आप हारने हो तो आई अंडरस्टैंड ना कि आप लोग हार रहे हो। तो उस समय कृष्ण भगवान को पता चलता है कि हम लोग हार रहे हैं, तो कृष्ण भगवान चालाक ही करते हैं, अपनी पिचकारी निकालते हैं गिली रंग वाली और राधा रानी के ऊपर निशाना बनाते हैं और किसी को समझ में आने के पहले वो चला भी देते हैं उसके ऊपर गुलाबी रंग का रंग, और राधा भी तुरंत अपना हाथ अपने गाल पर लाती है ऐसे सामने उसको रोकने के लिए, लेकिन वो पिचकारी का वेग जो है ना वो इतना रहता है कि इसको टकरा कर भी हाथ से ऊपर कुछ बिंदु जो है वो गाल पे आ जाते हैं, और वो गोरे गोरे गालों पर गुलाबी रंग का जो रंग आता है उसका उतना सौंदर्य अप्रतिम हो जाता है राधा रानी का। और कृष्ण जिन्होंने ये पिचकारी लगाई है वो सौंदर्य देख को भावविहोर हो जाते हैं, ही बिकम स्टंड और पिचकारी छोड़कर ऐसे ऐसे देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही होता है, मुझे बताने में वो समय लग रहा है लेकिन ये एकदम एक सेकंड में होता है सब कुछ, जो भी हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है एक सेकंड में होता है। और इन्होंने सूखी होली का रंग नियम तोड़ दिया ये देखकर सारी सखियां नाराज हो जाती और होली का गेम बंद कर देती, और उसी एक सेकंड के अंदर बंद करके नाराज होकर सब सखियां आकर कृष्ण को पकड़ लेती हैं जो भाव विभोर होकर राधा रानी को देख रहे हैं, तो दोनों हाथ पीछे मरोड़ लेते हैं पूरा, दोनों सखियां पीछे से पकड़ती है और उसको अरेस्ट करके ललिता जी के पास लेके आती है, क्योंकि ललिता जी ना वाम स्वभाव की है, तेज स्वभाव की है, राधा रानी की रक्षा करती है, राधा रानी बहुत सौम्य स्वभाव की है, बहुत कोमल स्वभाव की है, और राधा रानी पर कृष्ण का आतंक हमेशा चलते रहता है, तो जब भी होता है तभी कृष्ण भगवान आकर ललिता जी आकर उनको सहायता करती है। तो ऐसा जब कभी होता है तो ये मुकदमा ललिता जी के दरबार में आता है, तो कृष्ण को गुनहगार को पकड़कर वहां पर लेके आते हैं और सब बता देते कैसे कैसे हमारा था, क्या क्या था और उसने कैसे कैसे तोड़ दिया उसको, तो क्या इसको दंड दिया जाए। हाँ, होली का गुनहगार है ना, वो साधारण गुनहगार नहीं है, तो क्या दंड दिया जाए। तो ललिता सोचती है कि क्या दंड दिया जाए, क्योंकि सब प्रेम की लीला है ना, दंड भी प्रेम का ही होना चाहिए। तो कहती है कि हमेशा हम जब इनका श्रृंगार करते हैं लीलाओं में तो आखिर में श्रृंगार का पूर्ण कहां पर होता है, किसी को पता है श्रृंगार कहां पूर्ण होता है? काजल लगाने में होता है, लास्ट में काजल लगाते हैं, वो भी ऐसे कोमल उंगली से लेकर एक सुंदर लकीर निकालते हैं। हाँ, बड़े प्रेम से, बहुत ही महीन काम है ये। लेकिन आज हम हमारी पांचों उंगलियां काजल में डुबाकर इसका मुंह काला करेंगे। पुराने जमाने में ना जो होता ना अपराधी, कोई गांव में अपराध करता था ना तो उसको गधे में बिठाकर उसका मुंह काला करके उसके गांव में जुलूस निकालते थे। बहुत अच्छा दंड था वो, क्योंकि वो व्यक्ति इतना शर्माता था उसके वजह से और आगे कभी गुनाह नहीं करता था। तो इसको ये काला रंग लगाया जाए, इसका मुंह काला किया जाए, और जो दुपट्टा होता है ना वो पुरुषों का एक आदरपूर्वक वस्तु होती है, वो उसको खींचना मतलब अपराध जैसा है, अपमान जैसा है, इसका दुपट्टा खींचेंगे हम। हाँ, और इसके पीछे गाली लिखेंगे। अभी मैं यहां नहीं कह सकता वो गाली क्या है, लेकिन वो गाली है ब्रज में बहुत सुंदर। उसको लिखेंगे और धक्का मार के इसको होली के खेर से बाहर निकाल देंगे और दंड भी देंगे, ऊपर से लट्ठा प्रहार भी करेंगे इसके ऊपर। तो अभी निर्णय तो हो गया, फिर वो अभी कौन लगाएगा, तो राधा रानी स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि राधा रानी के प्रति उन्होंने अपराध किया ना, ये उनका जो भी नियम तोड़ने का काम है राधा रानी के प्रति हुआ है, तो राधा रानी अपने दोनों हाथ काजल में डुबाकर मुंह काला करेंगे, तो ये बंधे हुए हाथ पीछे बंधे हुए कृष्ण को लेकर राधा रानी के सामने आते हैं, और जैसे राधा रानी की हाथ लोग पकड़ के, क्यों राधा रानी भी थोड़ी ऐसा सहमी हुई है ना कि अरे कैसे करूं, लेकिन उसको करना है, तो उनको ये दोनों हाथ सखियां डुबाती है काजल में और ऐसे लेके जाती है, तो ये कृष्ण भगवान क्या करते पता है आपको, मुंह चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन। तो दो उसमें वर्णन आते हैं कि फिर सखियां पीछे से आती है और दोनों कान ऐसे पकड़ के सामने खड़े करते हैं उसके, और राधा रानी उनको काला लगा देती है, और एक कथा ऐसी आती है कि वो राधा रानी एक हाथ से उसको ऐसा पकड़ती है और दूसरे हाथ से काला लगा देती है, और फिर सखियां उनका दुपट्टा खींच लेती है, तीसरी सखी नाम पीछे गाली लिख देती है और फिर लट्ठा लेकर उनको मारना शुरू कर देती है। तो इसका नाम है लट्ठा मार होली। हाँ, तो ये लठामार होली है, बड़े बड़े दिव्य प्रेम का प्रतीक है। प्रेम से उनको वो लट्ठा मारते हैं। और वो जो ढाल मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगा, वो ढाल जो है बलराम का प्रतीक है। बलराम जी को लेकर वो ढाल को बनाने में कितना मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि ऊंट या गधे की खाल से ही, या तो ऊंट की खाल से ही बनता है ये। अभी ऊंट का खाल तो मिलता नहीं, तो फिर गधे की खाल से बनता है, और वो उसी से बनता है। अगर और किससे बनेगा तो एक लठ में फट जाएगा वो। तो वो बनाने के लिए 15-15 दिन लोग मेहनत करते हैं नंदगांव में। उसको सुंदर वस्त्रों से सजाते हैं, और नीचे ऐसा एक हुक होता है सब पकड़ने के लिए, और सर पे पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ये तैयारी होती है। और होली में कोई भी व्यक्ति पुराने वस्त्र नहीं पहनता है, ना होरियारे ना होरियारिन, सब नए वस्त्र पहनते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का जोड़ा पहनते हैं, महंगा वाला। और सभी जो गोपियां हैं, खास करके जो नवविवाहित तरुण गोपियां हैं, उनको 15 दिन घर में काम नहीं देते कुछ, क्योंकि बाद में लट्ठा मारना है ना। उसको मेवा खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं, आराम दिलाते हैं, अच्छी तरह से, अच्छी तरह मजबूत हो जाओ, जोरदार चलाना है। और एक लट्ठा उनको जो होता है, जिस लट्ठे से वो खेलने वाले हैं, उसको 15 दिन तेल पिलाते हैं। ऐसे बैठते हैं गोल सखियां, और लट्ठा लेकर उसको तेल का मालिश करते हैं, और छोड़ देते हैं। फिर वो तेल पी लेता है, फिर अगले दिन वापस बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, और 15 दिन तक उसको तेल पिलाते हैं लट्ठे को मजबूत करने के लिए, कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। और लट्ठा अपनी ऊंची से आधा ऊंचा और ऊंचा होता है। फिर होली के दिन, नवमी के दिन, सभी सखियां, ये बड़ा बड़ा ऐसा ना, अब दिवाली आ रही है, समझो दिवाली आ रही है, तो कैसे ना सबके घर में 8 दिन से ही वो खुशबू आने लगती है, करंजी, चकली, शंकरपाड़ी, ऐसे आने लगता है ना, कुंडिया सा मांडा, सब वस्तु आ जाती है। आपको पता था कि दिवाली आ रही है, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग। वैसे होली के 15 दिन से ये माहौल जो है, रंगीली होली के पहले से ये यहाँ पर लट्ठी बनाना, खरीदी करना, वहां पर ढाल बनाना, कपड़े खरीदी करना, सब चालू रहता है। और फिर ये सज धज के विवाहित स्त्रियां, अविवाहित लड़कियां, बड़ी बूढ़ी औरतें भी आती हैं, 50, 60, 70 साल की औरतें भी सज धज का जोड़ा पहनकर लट्ठा लेकर आती है। आपको देखना चाहिए कैसे वो 3-3, 4-4 फुट कूद कर लट्ठा मारते हैं। ऐसा कोई सांकेतिक खेल नहीं, इट्स नॉट लाइक अ सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है उनका। वो 3-3 फुट कूद कर ऐसे ठॉप 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 मारते हैं। और एक व्यक्ति बैठता है, आप जैसा ऐसा बैठे हुए हैं, ऐसा पकड़ के बैठता है, और एक के ऊपर 4-4 औरतें एक साथ वार करती है, मतलब ठप 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 ऐसे होता है। और वो व्यक्ति को संभालना है कि वो सर पे कहीं लग न जाए, बॉडी पे कहीं लग न जाए। और समझो कोई लग गया तो वहां का एक महिमा ऐसा है कि समझो किसी को लग गया, फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख रहे थे और आपके हाथ से वो सटक गया, और वो कहीं सटक के आपके कान पे कहीं लग गया, कंधे पे लग गया, समझो वहां जख्म हो गई, तो वहीं की मट्टी उठाते हैं और तुरंत वहां भर देते हैं, और वो जख्म ठीक हो जाता है। ये उत्सव जो है रंगीली होली, रंगीली गली नाम की गली है, वहां पर एक फेमस गली है, राधा रानी के मंदिर के नीचे ही है, मार्केट में है वो गली। तो रंगीली होली में इस दिन गवर्नमेंट की तरफ से अनेक ट्रक ब्रज की रज जो है मट्टी डाली जाती है। अगर रास्ता यहां पर है तो इतनी इतनी मट्टी डाल देते हैं, और उस मट्टी में सब लोग ये लट्ठामार होली खेलते हैं। और मैंने तो किसी को जख्मी होते देखा नहीं है, क्योंकि बड़े कुशल होते सब लोग वो, लेकिन कभी लगता है तो फिर वो मट्टी लगा देते हैं। और वो 1 घंटा शाम को 5 से 6 बजे तक नवमी के दिन में उत्सव होता है। और सज धज के गोपियां आती हैं, सज धज के यहाँ पर नंदगांव के लोग आते हैं, और बिल्डिंग के ऊपर से उन पर रंग डालते हैं, उनको बराबर गालियां बकते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली व्हेन दे कम द कॉन्स्टेंटली टीजिंग देम, उनको चिढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और रंग डालते रहते हैं, और वो बड़े प्रेम से रंग को स्वीकार करते हैं और आगे जाते हैं। फिर वो लठामार होली शुरू होती है। 1 घंटा चलता है ये काम। और उसमें क्या विशेषता है कि जब लट्ठी मारते हैं ना, तो वो जो लट्ठा ले रहे हैं उसका ध्यान गोपियों के चरणों में होता है। गोपियों के चरणों पर ध्यान करते ही वो लट्ठा मार सहन करते हैं। जब गोपी बंद करती है तो तुरंत जाकर चरण छूते हैं उसके, और चरण छूकर उनको वो गिफ्ट देते हैं जो हमने कहा था ना, वो बैग भर के, बक्सा भर के, पेटारा भर के लेके आते हैं ना, उसके अंदर जो अलंकार होते हैं, खाने पीने की वस्तु होती है, वस्त्र होते हैं, बहुत सारी सुंदर मूल्यवान वस्तु होती है, उसको फगुआ कहते हैं। फगुआ, फाग उत्सव में जो दंड देना पड़ता है, पेनल्टी, उसको फगुआ कहते हैं। तो बड़े प्रेम से ये पहले से ही हारने के लिए आते हैं। क्यों शुरू से वो फगुआ भर के लेके आ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि ये होली का उत्सव हमें हारने के लिए है। गोपियों के सामने प्लान करके आते हैं, और प्लान करके हारते हैं, और सभी गोपियों के चरणों की धूल लेना चाहते हैं, सभी गोपियों को बख्शीश देना चाहते हैं, सभी गोपियों का आशीर्वाद चाहते हैं। ये होली के पूरे उत्सव का एक रहस्य है, कितनी उच्च भावना है। और हम क्या देखते हैं बंबई में क्या होता है, किस तरह की भावना से लोग खेलते हैं। तो ये जो चंदन यात्रा में एक बार राधानाथ महाराज ने कहा था कि चंदन हमने कितना किलो लगाया, कितना उच्च प्रति का लगाया, कहां से लाया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस भावना से चंदन लगाया, ये इंपॉर्टेंट है। किस भावना से उसको रगड़ा और किस भावना से उसको कृष्ण को लगाया, उस भावना को कृष्ण स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से होली का खेल जो है वो किस कैसे भावना से हम खेल रहे हैं, उसी से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये सब समझना जरूरी है। तो ये लट्ठामार होली नवमी के दिन बरसाने में होती है, बरसाने की स्त्रियां नंदगांव के पुरुषों को पीटती है। अगले दिन दशमी के दिन बरसाना के पुरुष जो है वो नंदगांव जाते हैं वैसे ही सज सज कर, और नंदगांव की औरतें वैसे ही सज सज कर लट्ठा लेकर आती है और बरसाने के पुरुषों को पीटती है। तो वो बरसाना की लट्ठामार होली के बाद में दशमी के दिन नंदगांव में लट्ठामार होली होती है। फिर क्या आती है, एकादशी। तो एकादशी को कहते हैं रंग भरनी एकादशी, और ये एकादशी वृंदावन में होती है। इसमें बाकी बिहारी जो राधा वल्लभ जी, सातों गौड़ीय वैष्णवों के ठाकुर, ये सभी होली खेलते हैं। निधि वन, सेवा कुंज, सब जगह होली खेली जाती है। ठाकुर जी के ऊपर रंग चला जाता है। उसी दिन पुराने काल में उसी एकादशी के दिन शिव जी को पार्वती के साथ में होली खेलने का दिल हुआ था, तो उन्होंने इसी दिन पार्वती के साथ में होली खेली है, तो इसलिए उसका रंग भरनी नाम पड़ा है। तो ये पूरे वृंदावन में खेली जाती है। फिर उसके बाद में छड़ीमार होली शुरू होती है। बलराम जी भी होली खेलते हैं। बलराम जी वो जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, हल, हल चलाते हैं, प्लाऊ। हाँ, तो हल के प्रतिनिधि के रूप में छड़ी लेकर गोपियां आती है और वहां पर लट्ठा लेके आते हैं। लट्ठामार होली में यहां पर छड़ी लेके आते हैं और फिर बलराम जी के भाव से सभी गोपियां बलराम के सखाओं को पीटती है छड़ी से। ये छोटी बठेन और बड़ी बठेन नाम की जगह है, वहां पर ये छड़ीमार होली होती है। जाव गांव में भी छड़ीमार होली होती है। ये होने के बाद में आज का दिन आता है, कल का दिन यानी पूर्णिमा का दिन। उसके चतुर्दशी के दिन क्या होता है, उसको कहते हैं फालेंद की होली। तो फालेंद नाम का गांव है, आज भी वहां पर एक तपस्वी परिवार है, परंपरा चलती है उसके अंदर। वो तपस्वी परिवार में जो आज का जो प्रमुख पंडा है वो बहुत ब्राह्मण है और तपस्वी है, उसका जीवन बहुत पवित्र है, साल भर वो भजन करता है, उसका जीवन एक आदर्श जीवन है। इस दिन वो जो प्रमुख पंडा है फालेंद का, वो अपने शरीर को तेल लगाता है, और जैसे हम लोग भी माताएं कहाँ तक बैठी हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतना बड़ा होली का आप कुंड कह सकते हैं, गड्ढा कह सकते हैं, इतना बड़ा होता है। यानी ऐसा है पूरा, ये पूरा जो है ऐसा फ्लेम में होता है, इतना बड़ा होता है वो। इट्स लाइक अ माउंटेन, यू कैन सी माउंटेन ऑन फायर। और वो पंडा तेल लगाकर एक तरफ से अंदर जाता है और पूरा चलकर वहां से बाहर निकलता है और वहां से वापस चलकर यहां से बाहर निकलता है, और उसको कुछ नहीं होता है, और उसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस का बंदोबस्त रहता है, कॉर्डन रहता है, उसके पीछे लोग खड़े रहते हैं, और वो अकेला पांडा जो है चल के जाता है, वापस आता है। उसके सारी लाइव वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, हर साल की आती है लाइव। ये चमत्कार होता है होली के दिन में। और लंबी कथा आप जानते हैं, होलिका देवी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद को जलकर भस्म करने के लिए उसने गोद पर लिया और आग लगाई, लेकिन होलिका देवी को खुद को अग्नि से बचने के लिए वरदान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से, लेकिन दूसरों को मारने के लिए नहीं हुआ था। इसलिए जब वो जलने लगी खुद और प्रहलाद नहीं जल रहे थे, तो उसने पूछा, अरे मैं तो जल रही हूँ, मैं कैसे वरदान प्राप्त हूँ, ब्रह्मा जी कहाँ पर हो आप, आपका वरदान झूठ कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा उनको कि आपको हमने तपस्या के फल से ये वरदान दिया था कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको अग्नि नहीं जलाएगा, जब आपका जीवन अग्नि के द्वारा संकट में आएगा तो अग्नि आपको नहीं जलाएगा, लेकिन आपने इस वरदान का दुरुपयोग किया किसी और को जलाने के लिए, इसलिए इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए उस अग्नि के प्रयोग में होलिका देवी जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तो उसी उपलक्ष्य में हम होली खेलते हैं, होली जलाते हैं, होली का दहन करते हैं। उसका रहस्य ये है, उसका मैसेज ये है कि हमारे अंदर जो गलत प्रवृत्तियां हैं, द्वेष की, क्रोध की, काम की, मद की, ये सारी प्रवृत्तियां होलिका ने क्या किया था, किसी व्यक्ति को नष्ट करना चाहा ना स्वार्थ के लिए, सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर बसी हुई हैं, उसको जलाकर नष्ट करने के लिए होली का दहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, रात भर जगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं ये सब नष्ट हो जाएं और हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए और उसमें भक्ति की वृद्धि हो जाए। और मैंने सुबह भी कहा था ये बात कि होलिका का जो दहन है ये किसी भी लकड़ी से नहीं होता है, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, कदम की लकड़ी, तमाल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, औदुम्बर की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, ऐसे विशिष्ट क्या कहते हैं उसको, हर्बल वुड जो होता है ना, वो जड़ी बूटी वाला जो जो अच्छा मान्यता प्राप्त शास्त्रोक्त जो लकड़ी होती है उसी से उसको जलाते हैं, उससे वातावरण में इस ऋतु संधि के लिए अनुकूल धुआं उत्पन्न होता है, जिससे सर्दी और गर्मी के संधि में जो कुछ जंतु संसर्ग होने की संभावना है वो उस धुएं को सूंघने से अपने फेफड़े को शक्ति प्राप्त होती है। हमारा सारा धर्म जो है वो आरोग्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी धर्म जो है आरोग्य के विचार के बिना नहीं बना हुआ है। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, उन्होंने सारे धार्मिक विधियों को आरोग्य के साथ भी जोड़ दिया है। और उसके बाद में जो होली हम खेलते हैं यहाँ पर, कोई वो ऑयल पेंट लगाते हैं, कुछ कुछ कलर लगाते हैं जो 10-10 दिन निकलता नहीं है, चमड़ी खराब हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। हाँ, आपके पास पेशेंट भी आते होंगे होली के बाद, हाँ, सो मेनी एलर्जिक कंडीशन आर देयर। लेकिन वास्तविक में ब्रज में ऐसा एक पौधा इस समय आता है जो पौधे के पत्ते बनिया के पास मिलते हैं सब दुकान में, उसको वो गर्म पानी में उबालते हैं और गर्म पानी में रखते हैं, उसका सारा रंग और उसकी खुशबू वो जल में उतरता है, पान पत्ते निकाल देते हैं, फिर गुनगुना पानी पिचकारी में भर के जब चलाते हैं तो आपकी त्वचा खिल जाती है, द स्किन बिकम्स वेरी हेल्दी, द ऑल पोर्स ओपन, उनके सारे जो दोष है उसमें से वो सब निकल जाते हैं और आपकी त्वचा खिल जाती है। जैसे गोमूत्र गोबर से स्नान करने से आप देखेंगे त्वचा आपकी बिल्कुल तजेलदार हो जाती है, बिकम्स वेरी एफलजेंट और तेजस्वी। तो ये होली का रंग अगर वो आप यूज करेंगे तो आपकी सबकी त्वचा खिल जाएगी और वो आरोग्य के लिए बहुत ही क्या कहते हैं अनुकूल है। तो ये भी हमें पता नहीं है, तो केवल ब्रज में ही मिलती है, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर किसी को पता ही नहीं वो क्या होता है, लेकिन हमने ये सब गोस्वामियों से सुना है और उसका अनुभव भी किया है, वो गुनगुने पानी से होली भी खेली है और उसका जो अनुभव है ना हमको वो भी हमारे पास अभी भी याद है कि उससे क्या अनुभव होता है। जैसे बैठकर आप किसी जगह पर गर्म पानी से स्नान करेंगे तो एक अनुभूति होती है और खड़े होकर आप स्नान करेंगे दूसरी अनुभूति होती है और सुगंधित जल से स्नान करेंगे तो तीसरी अनुभूति होती है। हाँ, ये सब शास्त्रोक्त है सब, इसलिए कहते हैं कि बैठकर स्नान करना चाहिए, सुगंधित जल से स्नान करना चाहिए, जड़ी बूटी वाले से स्नान करना चाहिए, गंगा जी जमुना जी का स्मरण करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए रोज। ओके, तो ये थोड़ा मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया। उसके बाद में एक उत्सव शुरू होता है जिसका ये धूलि वंदन का उत्सव आता है। होलिका दहन हो गया, नेक्स्ट डे धूलि वंदन। इसका रहस्य यह है कि भारत भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि सभी संतों का जन्म यहाँ पर हुआ है, जितने भी संत लाखों हुए हैं हर राज्य में हुए हैं, ये भारतवर्ष में हुए और कहीं नहीं हुए हैं, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब भारतवर्ष में हुए हैं। इसलिए धूलि, यहाँ की जो धूलि है, जो रज है, जो मट्टी है, यहाँ की माटी है, भारत माता इतनी पवित्र है कि आज के दिन मतलब पूर्णिमा के दिन उसका पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, इसलिए नाम क्या है उत्सव का, धूलि वंदन। और आज वो लोग क्या करते हैं, गटर को अंदर जाकर कीचड़ निकालते हैं और गाड़ी पर औरतों पर फेंकते हैं उसको, ये उसका विभत्स विकृत स्वरूप है। लेकिन वास्तविक क्या स्वभाव है, क्या भाव है उसका, कि वो ब्रज जो है इतनी पवित्र है, चाहे ब्रज की हो या भारत भर की हो, उसको हम पहले वंदन करते हैं और दूसरों को प्रेम से लगाते हैं कि संतों के चरणों की रज है, ये भगवान के अवतारों के चरणों की रज है, इस भाव से ये धूलि वंदन का कार्यक्रम होता है। उस दिन यहाँ पर हम रंग भी खेलते हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैंने देखा, हमने भी कल भक्ति विदंत अस्पताल में डॉक्टरों ने मिलकर होली खेली, लेकिन इतने आदर पूर्णता से, इतने नम्रता से, हाँ, इतने सम्मान के साथ में प्रेम से वो खेला गया, उसमें कोई भी कष्ट नहीं हुआ किसी को, सब जान पहचान के प्रेम करने वाले लोग ही थे, अनजान लोग नहीं थे, सबको ऑर्गेनिक कलर लाकर डॉक्टर संख्य ने सबको लगाया, हमने लगाया, उन्होंने लगाया, सबको लगाया, बहुत प्रेम से गले गले मिले, प्रेम प्रकट किया। यहां पर भी देखा मैंने, बहुत लोगों ने, आए हुए मेहमानों ने कलर लगाया, इसमें कहीं बीभत्सर कुछ नहीं था, विकृत कुछ नहीं था। तो हमको ये एस्टैब्लिश करना है कि कैसे सही भाव से ये उत्सव मनाए जाए ताकि उसका सही लाभ आप सबको प्राप्त हो जाए। विभत्स तरीके से उत्सव संपन्न करने से क्या होता है, विभत्स भाव ही अंदर प्रवेश करता है और आत्मा को कलुषित दूषित कर देता है। ये सारे उत्सव जो है ये हमारे लिए एक तो आनंद देने वाले, उत्सव का मतलब क्या है, हमको वो ऊपर उठाते हैं, इट राइजेस यू अप फ्रॉम द लोअर सिचुएशन। कोई दुखी है, कोई कोई परेशान है, कोई त्रस्त है मन से भावना से, तो ये उत्सव में उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जब जन्म हुआ था तो लिखा है कि कोई दुखी लोग भी वहां पर आए, लेकिन महाप्रभु का जन्म के माहौल में प्रवेश करते ही पूरे आनंदित हो गए, सभी दुख दे दुख दर्द सब मिट गए उनके। तो उत्सव का यही कारण है। भारतवर्ष में पुराने जमाने में कभी मेंटल डिप्रेशन नहीं होता था, कारण क्या उसका, अरे लग लग के उत्सव है, नवरात्रि समाप्त हो गए तो दिवाली शुरू, दिवाली शुरू हो गए तो वापस ढोल यात्रा शुरू, ओडन षष्ठी आएगी, उसके बाद में मकर संक्रांति आएगी, उसके बाद में होली शुरू हो जाएगी, उसके बाद में रामनवमी आ जाएगी, उसके बाद में फिर क्या कहें आपको, नरसिंह चतुर्दशी आ जाएगी, फिर रथ यात्रा आ जाएगी, फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी। चैतन्य महाप्रभु को एक साल क्यों रोका उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु को बड़े जल्दी वृंदावन जाना था, तो क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु जी अभी अभी ढोल यात्रा आने वाले, ढोल यात्रा करके जाओ, समाप्त होती बोलेंगे अभी भी ये उत्सव आने वाला है, अभी ये तो ओडन षष्ठी आने वाली, अभी तो रथ यात्रा आएगी, अभी ऐसा करके पूरा राउंड पूरा कर दिया। तो समझ में आया उनको, अरे लास्ट रथ यात्रा में कहा था कि अभी ये करके जाओ, अगली रथ यात्रा आ गई तो भी जाने को नहीं दे रहे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि भारतवर्ष में हर राज्य में अलग अलग के उत्सव होते हैं। एक उत्सव की तैयारी होके उत्सव संपन्न हुआ तो आप सेटल नहीं हुए तो आपको अगले उत्सव की तैयारी करनी है, तो बीच में डिप्रेस होने के लिए समय किधर है, There is no time to get depressed. आनंद ही आनंद की तैयारी है। और उत्सव कैसा होता है, होता है एक दिन, 18 तारीख को भक्ति विधान में गौर निताई का आगमन हुआ, इतना आनंद हुआ क्या कहें, आपको वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन 15-20 दिन से उसका टेम्परेचर चल रहा था, हाँ क्या कहते हैं उसको, माहौल बन रहा था, वातावरण, एवरीबडी वॉज मीटिंग प्रिपेयरिंग, क्या करना है कैसे करना है, मंदिर में जा रहे थे उसको डिसाइड कर रहे थे कैसे करना है, फोटो लगा रहे थे, पेंटिंग हो रहा था, हर प्रकार की व्यवस्था, एक एक ऐसा एक वातावरण बन गया था कि अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो उत्सव की तैयारी भी एक आनंद का अनुभव है, उत्सव भी आनंद का अनुभव है, उसके बाद में तुरंत दूसरा उत्सव शुरू करना है। इसलिए भारतवर्ष में कभी पहले मानसिक तनाव डिप्रेशन नहीं हुआ करता था, वो बाहर के देशों में होता है क्योंकि वहां पर केवल एक या दो ही उत्सव साल में होते हैं, बीच में सब लोग फ्री होते हैं डिप्रेस होने के लिए। भारतवर्ष में नहीं होता ऐसा। तो उत्सव जो है वो नंबर वन आपके दुखों को दूर करने के लिए है, दूसरा उद्देश्य आपको आनंद प्राप्त करने के लिए है, और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है भगवान से और नजदीक जाने के लिए उत्सव होता है। एनी फेस्टिवल शुड फाइनली टेक यू क्लोजर टू कृष्णा देन व्हाट यू आर ऑलरेडी, तब आपका उत्सव संपन्न हो गया, यह उत्सव इज फुलफिल्ड। अगर वो ऐसा नहीं लगता है आपको तो आपके लिए कम से कम उत्सव संपन्न नहीं हुआ। इसलिए देखना हमको यह है कि उसका भाव हम समझें और उस भाव से उसको मनाएं, क्योंकि भगवान आपका उत्सव की भव्यता को नहीं देखते हैं, भगवान हमेशा उत्सव के भाव को देखते हैं, किस भाव से मनाया गया। इसलिए ये सब भाव समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी कहां तक आ गए हम लोग, धूली वंदन हो गया, धूली वंदन के बाद में होरंगा नाम की होली शुरू होती है, एक अलग टाइप का होली होता है होरंगा, वो पहले होता है बलदेव में, बलदेव जो है ना दक्षिण दिशा में है, ब्रज का दक्षिण एंड है वो, बलदेव यानी दाऊ जी, वहां पर दाऊ जी आए थे कृष्ण का संदेश लेकर, तो वहां पर 100,000 गायों का दूध निकालकर नंद बाबा ने उनका अभिषेक किया था, वहां पर एक कुंड बना क्षीर सागर कुंड, जहां पर रियल क्षीर सागर प्रकट हुआ उस दुहानी, और वहां पर बलदेव जी रहे, विराजमान रहे, रेवती को लेकर आए थे, रेवती भी वहां पर विराजमान है। तो बलदेव का एक विशेष होरंगा होता है जो सबके एंड में होता है, अभी आएगा 2 दिन में चालू हो जाएगा, बड़ी उसकी लंबी लंबी एडवर्टाइज होती है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, बहुत उसका प्रस्त है, जैसा कि रंगीली होली का जैसा महात्म्य है ना, वैसे बलदेव की होरंगा का महात्म्य है। और बलदेव के यहाँ पर होरंगा खेलने के बाद में नंदगांव में होरंगा होता है, फिर लास्ट में जो है वो छोटी बठेन बड़ी बठेन और जाव जहाँ पर राधा रानी का ससुराल है वहाँ पर लास्ट होली होती है, और इस तरह से ये 45 दिन की होली संपन्न होती है। तो हमें इसमें सीखना यह है कि भक्तों के सामने कभी भी विजय प्राप्त करने की भावना नहीं होनी चाहिए। आप सही भी है, अगर आपका पक्ष सही भी है, लेकिन भक्तों को डिफीट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्तों को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके भक्तों के सामने नम्र होकर उनको जिताना चाहिए। भले वाद विवाद में हो, तर्क में हो, या किसी और चीज में हो, या यश दिलाने में हो, या सेवा में उनको अग्रेसर करने में हो, हाँ, तो यू हैव टू पुश डिवोटीज अहेड ऑफ यू एंड स्टे बिहाइंड। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ महाराज क्या कहते हैं कि अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 1,00,000 संख्या किताब की अगर कोई किसी ने हासिल नहीं की होगी, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लोग 1,00,000 किताब वितरण करें। लेकिन वो 1,00,000 किताब वितरण करने के बाद में हमारा नंबर सबसे लास्ट आ जाए। मतलब क्या हुआ, आपने मैक्सिमम पुस्तक वितरण किए, लेकिन आप चाहते ये है कि हम सबसे पीछे रहें और बाकी सब लोग 1,00,000 के ऊपर हमारे से आगे चले जाएं। ये भाव जब हमारा होगा ना, तभी कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण भी अपने भक्तों पर, गोपियों पर कैसे प्रेम करते हैं, और उनके सामने हमेशा हारते हैं, हमेशा हारते हैं। राधा कुंड के, श्याम कुंड के किनारे पे राधा रानी और गोपियां कृष्ण से चौसर खेलते हैं, और सभी गोपियां मिलकर राधा कृष्ण भगवान को बड़ा परास्त कर देते हैं। वहां पर जहां जहां फूल चोरी में और कहीं कहीं जो भी होता है, वो कृष्ण कभी कभी हावी हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर राधा रानी और गोपियों के सामने कृष्ण नतमस्तक हो जाते हैं और हार स्वीकार करते हैं। बार बार गिड़गिड़ाते हैं, चरणों में गिरते हैं, विनती करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं, और क्या चाहते हैं कि मेरी ये जो भक्त गोपियां हैं ये हमेशा संतुष्ट रहे, आनंदित रहे, और उनकी कृपा का वर्षा मुझ पर बना रहे। ये भगवान सोच रहे हैं, जिनकी कृपा हम चाहते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की कृपा चाहते हैं। इसलिए शिवजी भी भागवत में बताते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम, सभी देवताओं की आराधना में विष्णु की आराधना परम है, लेकिन हे देवी उसके आगे भी एक आराधना है जो कृष्ण स्वयं करते हैं, मत भक्ता पूजा व्याधि का, अपने भक्तों की आराधना करते हैं। तो भगवान स्वयं ही उदाहरण दे रहे हैं, तो हमें उनका अनुकरण तो करना ही चाहिए ना। वो अगर अपने भक्तों को सामने झुक रहे हैं, भक्तों को विजय दिला रहे हैं, उनका गौरव कर रहे हैं, तो भक्तों को गौरव दिलाना ही हमारा भी जीवन का एक धर्म कर्तव्य है। तो ये होली का संक्षेप में भाव है। अलग अलग प्रकार की होलियां हैं, हम रिवाइज करेंगे। पहली होली वसंत पंचमी को शुरू होती है, उसके बाद में रंग लड्डू मार होली होती है पांडे लीला के साथ, उसके बाद लट्ठा मार होली होती है, एक बरसाने की होती है, फिर नंदगांव की होती है, उसके बाद रंग भरने एकादशी होती है, उसके बाद में क्या होता है, छड़ी मार होली होती है, दो दिन की दो जगह पर अलग अलग दिशा पर, उसके बाद में क्या होता है, फालेंद की होली होती है, होली का दहन वाली, उसके बाद में क्या होता है, धूलि वंदन होली होती है, उसके बाद में होरंगा होता है। इस प्रकार से ये सभी होलियां संपन्न होती है, और सभी होलियों का भाव यही है, पर पक्ष को जो है उनको आनंद देना है, पर पक्ष में आनंद में खुद का आनंद का अनुभव करना है। ये वैष्णव का सर्वोच्च भाव है, और ये हर लीला में आप देखेंगे कृष्ण भगवान की, हर लीला जो कृष्ण भगवान करते हैं वो भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं, राक्षसों को मारते भी उसके लिए करते हैं, गौचारण भी उसके लिए करते हैं। देखिए सब ग्वाल बाल बैठ के खा रहे हैं और अचानक बछड़े गायब दिखाई पड़ते हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो, नो यू डोंट गेट अप, प्लीज सिट, मैं जाके देखता हूँ, आप लोग अपने आनंद का भंग मत करो, मैं ग्वाल बालों को, अपने बछड़ों को ढूंढता हूँ, और खुद अपने हाथ में दही लेकर ढूंढ रहे हैं और उनको बालक नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या भाव है भगवान का कि माई डिवोटीज शुड बी हैप्पी, दे शुड ऑलवेज बी हैप्पी, और मैं उनका सेवक हूँ, उनको आनंद देना मेरा कर्तव्य है। ये हमारे कृष्ण भगवान का भाव है। उसी प्रकार से हमको भी एक बार गुरु महाराज ने हमको लंदन से फोन किया था, बहुत पुरानी बात है ये, और बहुत एक्साइटमेंट के अंदर फोन किया था। उन्होंने कहा था कि आज तक मैंने जो पढ़ा था शास्त्र में, उसमें सुना था कि युग धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि कलयुग के दो युग धर्म है, एक हरिनाम संकीर्तन और एक वैष्णव सेवा, साथ साथ चलते ही, शास्त्रोक्त है, शास्त्र के अनुसार है, मन घड़ंत बात नहीं है। शास्त्र में कहा है कि वैष्णव सेवा करके वैष्णव को प्रसन्न करना और फिर उनकी कृपा से हरिनाम लेना, ये दोनों इस युग युग के धर्म हैं। वो जो दोनों को समझता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जो वैष्णव सेवा में लगा हुआ है उसी का भजन अच्छा होता है, कि जो वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है उस पर भगवान भर भर के कृपा करते हैं। और जिन्होंने वैष्णव कृपा वैष्णव सेवा करके अपना बड़ा अकाउंट बना लिया है उसको आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि वैष्णवों की कृपा वैष्णवों की खुशी में ही भगवान अपनी खुशी मानते हैं। वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न होना अपने आप प्रसन्न पसंद कर लेते कि आई एम हैप्पी ऑलरेडी बिकॉज यू आर प्लीज माई डिवोटी। तो हमारे खाते में अगर बहुत प्रिय भगवान के भक्तों की सेवा अगर है ऑलरेडी तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। निरंतर जब तक सांस में सांस है, हृदय में धड़कन है, तब तक हमें कंटिन्यूसली संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की, उनके पद को ना देखते हुए, उच्च नीच को ना देखते हुए, सभी वैष्णवों की सेवा करने का भाव हम बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के अंतकाल में हमें भगवान की याद आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और अभी 5 मिनट बाकी है तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें से बहुत बातें आपको पता नहीं होगी आज के तारीख में, आज पता हो गया होगा। ऐसे निश्चित रूप से हमें हमारे धर्म के उत्सवों के बारे में और तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सारा ज्ञान जो है वो ब्रिटिशों ने पूरी तरह से छीन लिया है, योजनाबद्ध रीति से, विद अ फुल स्ट्रैटेजी एंड प्लान, स्टडी करके पूरा हमारा जो है संस्कृति को नष्ट कर दिया उन्होंने। और फिर बचे हुए पिछले 50 साल में अमेरिकन टीवी ने जो बचा कुचा था वो भी साफ कर लिया पूरा। और हमको सबको बौद्धिक गुलाम बना दिया, बुद्धि के लेवल पर गुलाम बना दिया, यहां तक कि हम लोग ऐसे ट्रेन किए गए कि भारतीय सब वस्तुएं थर्ड क्लास होती है और विलायती वस्तुएं कीमती होती है। यहां का एजुकेशन निम्न दर्जे का होता है, वहां का एजुकेशन उच्च दर्जे का होता है। वहां की वस्तुएं गौरवशाली होती है, यहां की वस्तुएं घटिया होती है। ये प्रकार का जो मेंटेलिटी बना दिया, हाँ, ताकि हमारे बच्चे विदेश में पढ़े, हमारे बच्चे विदेशी वस्त्र पहने, हमारे बच्चे हमारे धर्म को छोड़ दें और उस धर्म को अपनाएं, वैसे सोचे, वैसे पहने, वैसे खाए, वैसे पिए। हाँ, लोगों को स्कूलों में अभी सिखाया जाता है कि कैसे टेबल पर बैठकर काटो और चमचे से खाना है। दिस इज लाइक टेबल एटिकेट्स के रूप में लोगों को सिखाया जाता है। पैरास्टेमॉल डालकर पानी देते हैं बुखार के व्यक्ति को और कहते हैं ये हमारे भगवान का पवित्र जल है, उससे बुखार उतरता है तो कहते हैं हमारे भगवान ने आपको बचाया। स्कूलों में क्या करते हैं, नन्हे नन्हे बच्चों को जो सीनियर केजी में हैं, छोटे से बच्चे, उनको कहते हैं कुछ खिलौने रखते हैं ऐसे टेबल पर उनके गेम के पीरियड में, हाँ, उनको चारों तरफ बिठाते हैं और एक ऑटोमेटिक खिलौने रखते हैं और कहते हैं कि आप अपने अपने भगवान को पुकारो और कहो कि ये खिलौनों को चलाएं। फिर वो बच्चे बेचारे अपने अपने राम कृष्ण किसी नरसिंह कोई उड़पी कृष्ण किसी देवी को पूछता है कि ये खिलौनों को चला लो, तो खिलौने चलते ही नहीं है। फिर वो टीचर कहते हैं कि अब मैं हमारे भगवान को पुकारती हूँ, जीसस क्राइस्ट को पुकारती हूँ, और उसके हाथ में होता है रिमोट, वो टेबल के नीचे होता है, वो रिमोट से उसको चलाती है और खिलौने चलने लगते हैं। तो बच्चों के अंदर क्या संस्कार हो रहे हैं कि हमारे राम कृष्ण सभी ये सब बेकार है, कोई पावर नहीं इसके अंदर, जीसस का नाम लेते ही तुरंत खिलौना चालू हो गया। तो क्या डालते हैं उनके बच्चों के मन में कि जीसस जो है वो भगवान है और बाकी सब जो है वो भूत प्रेत है, उनको कपड़े में बांधकर नदी में डालना चाहिए, सागर में डालना चाहिए, कुएं में डालना चाहिए। जब तक ये भूत प्रेत तुम्हारे घर से नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इस तरह से बच्चों के अंदर ये ठूस ठूस कर संस्कार डाले जाते हैं और फिर वो आगे जाकर क्रिश्चियन लड़का या क्रिश्चियन लड़की का शादी भी कर सकता है, उतना तैयार कर देते हैं उनको उस धर्म की स्वीकृति करने के लिए। इस बीच में हुआ क्या है, हमको उस धर्म से कोई द्वेष नहीं है। इस बीच में हुआ यह है कि हमारी सारी संस्कृति, सारे उत्सव, सारा महत्व, सारी महिमा गरिमा सब हम खो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हम वहां जाना चाहते हैं और वहां जाकर बस गए, बच्चों को जन्म दिया तो फिर वो सब कुछ भूल जाते, दिवाली पता नहीं, गणपति पता नहीं, नवरात्रि पता नहीं, कुछ नहीं पता, और फिर जो भी पता है वो विकृत पता है तो विकृति में चलते हैं, पूरा ज्ञान ही नहीं, सब कुछ पूरा खोसला हो गया। और वो लोग यहां से ज्ञान छीन छीन कर जाकर वहां पेटेंट बनाते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने धर्म को वहां पर जाके अपने ज्ञान में लेते हैं स्वार्थ के लिए। और हमारा सब धन जो है हम लोग खो चुके हैं, और आज भी उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। ये सब इतना प्रयास क्यों किया, इतने सारे होलियों का वर्णन करने का प्रयास क्यों किया है, ताकि हमको समझे कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो वैदिक कल्चर है, वो इतना रिच है, कोई देश उसकी तुलना नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता हमारे सामने, इतना हमारा भंडार है। लेकिन जिनका भंडार है उन्होंने छोड़ दिया है, तो दूसरा क्यों गर्व करेगा उसके ऊपर। जिसको गर्व होना चाहिए उसको इस पर गर्व नहीं है, पता भी नहीं है, और गर्व कैसे करेगा वो। तो जब आपको आपके वस्तु पर गर्व नहीं है तो दूसरा व्यक्ति आपके वस्तु पर गर्व क्यों करेगा। तो ये जागने का समय है, अभी नहीं जागेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अभी ऐसे सभा दिख रहे हैं ना आपको, देख लो एक बार, शायद आप अभी नहीं जागेंगे तो ये दिखने का बंद हो जाएगा, फिर छुपके हमको जीने के नीचे बैठकर कथा करनी पड़ेगी। वो जीना होता है ना, जीना उसके नीचे जगह होती है, ट्राइंगुलर जगह, वहां पर 5 लोगों को लेकर छुप छुप के कथा करनी पड़ेगी। सऊदी अरब में कैसे करते हैं हम लोग, मैंने भी किया था छुप छुप कर। ये भी दिन दूर नहीं है अगर हम लोग अभी नहीं जगेंगे तो। ये जो आध्यात्मिक उन्नति, भगवान नाम जप, कृष्ण प्रेम, ये बहुत ऊंची बातें हैं। ये बेसिक बातें अगर हम नहीं करेंगे, हमारे वस्त्रों को, धोती कुर्ता पहनने में हमको गर्व नहीं होगा, शिखा रखने में गर्व नहीं होगा, तो सब भूल जाओ, आगे का कृष्ण प्रेम सब भूल जाओ। इसलिए तन मन भावना बुद्धि और आत्मा, ये सबके साथ में हमारे धर्म का पालन होना चाहिए। ये बौद्धिक गुलामगिरी को त्यागना चाहिए और हमारी चीजों पर, बुद्धि के आधार पर हमको गर्व निर्माण करना चाहिए, तब जाकर हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, और हमारे भगवान का जो संस्कृति है, प्रेम की संस्कृति, वो भी जारी रहेगी। आखिरी बात बताता हूं, ये होली के समय पर वहां पर समाज होता है और लोग होली के गीत गाते हैं, और क्या बताऊं आपको, ऐसे गांव के ना एकदम अनपढ़, ऐसे फटीचर गरीब लोग फटे वस्त्र पहनकर आते हैं और इतना सुंदर प्रेम से होली के रसिया गाते हैं, क्या कहें आपको, उनको देखकर सा गदगद हो जाते हैं आप। अभी आप उनको मिलेंगे रस्ते में, आपको लगेगा कि सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो जो वहां गाने को बैठेगा ना, वैसा गाएगा आपका हृदय को हिला देगा वो। तब मुझे ये कई बार होली के उत्सव में बैठकर वहां पर ये अनुभूति हुई कि इसीलिए भारतवर्ष में किसी का राज्य नहीं आया, यवनों का या क्रिश्चियनों का या हमारा देश का परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में इजिप्ट चेंज हो गया, ईरान चेंज हो गया, इराक चेंज हो गया, बर्मा चेंज हो गया, इंडोनेशिया चेंज हो गया, मलेशिया चेंज हो गया, बांग्लादेश चेंज हो गया, सब चेंज हो गए, सबके धर्म चेंज हो गए, लेकिन भारत का, देश का धर्म अभी तक चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे देश में जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके हृदय के अंदर के कोने तक ये संस्कृति छुपी हुई है, इसलिए हमारा देश बचा हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम नहीं जगेंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आप सबको विनती करता हूं, अपने संस्कृति को आप जानो, पढ़ो, समझो, प्रश्न करो, और खास करके आपने अगले पीढ़ी को, अपने बच्चों को समझाओ कि ये सब क्या है, इसका अर्थ क्या है, कैसे इसको खेला जाता है, कैसे हम उत्सव मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, क्या उसका भाव है। ये जब पुनरुज्जीवन होगा, ये क्रांति होगी, तो हम आगे भविष्य को आशा से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए निराशा ही निराशा है। तो अगर आपको ये सुनकर अच्छा लगा हो तो कहते हैं ना वीडियो में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, तो हम भी आपको विनती कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और फॉरवर्ड करो, मतलब लोगों को बताओ, लोगों में जन जागृति करो। हरे कृष्णा। सब लोग पुकारो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये महामंत्र भी आपके देश का धन है, इंपोर्टेड नहीं है, सीधे गोलोक वृंदावन से इधर ही आया है, और आपकी पूरी रॉयल्टी कहते ना उसको, पूरा कॉपीराइट आपका है उसका, आपको लोगों को देना है, और सबके जीवन को आपको सुधारना है, उसमें समृद्धि लानी है, और यश लाना है, और संपन्न करना है। ठीक है, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। हम सब लोग विश्वरूप प्रभु को धन्यवाद देंगे, इतना सुंदर कथा होली के बारे में, पूरा अलग अलग प्रकार का होली क्या है, ये सब पहले बार, प्रथम बार हम इतना विस्तृत रूप से कथा सुन रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं विश्वरूप प्रभु के लिए, उत्सव क्या है, उत्सव बनाने में क्या होते हैं. प्रभु जी एक भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं स्ट्रेस से बाहर आने के लिए उत्सव बनाइए. वो हॉस्पिटल से आके बता रहे हैं हमको. इतना महत्वपूर्ण है हमारा, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है प्रभु जी के द्वारा इतना सुंदर कथा सुनने के लिए भाग्य मिला. हम आइए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे तीन बार हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
थैंक यू
प्रभु की जय. हरे कृष्णा. जो रजिस्टर्ड गेस्ट है, कोई रूम में निवास कर रहे हैं, उनके लिए प्रसाद ऊपर है, उधर जाके आप प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं. आप हमारा कम्युनिटी के लिए, सबके लिए प्रसाद ललिता भवन में है. आप सभी लोग कम्युनिटी डिवोटीज कैन टेक प्रसाद इन ललिता भवन. ललिता भवन में प्रसाद ले लीजिए. हरे कृष्णा, धन्यवाद.